तुम भी कमरे में चलो, मैं खाना लेकर आता हूँ। दृशांत ने नर्म लहजे में कहा और पल्लवी को एक नज़र देखने के बाद रसोई की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद पल्लवी और दृशांत एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनके बीच खाने की ट्रे रखी थी। पल्लवी की हथेलियों में मेहंदी लगी थी। दृशांत ने निवाला तोड़कर सब्जी लगाई और उसे पल्लवी की ओर बढ़ा दिया। लो खाओ। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, आप खा लीजिए ना, मैं मेहंदी सूखने के बाद खुद से खा लूंगी। पल्लवी संकोच के मारे खाने से कतरा रही थी। उसकी बात सुनकर दृशांत के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अपनी बीवी का ख्याल रखने में मुझे तकलीफ होगी? दृशांत का सवाल सुनकर पल्लवी सकपका गई और तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे नहीं जानना। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मेरी बीवी खुद को छोड़कर मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है, खुद से ऊपर उन्हें रखती है, उनका इतना ख्याल रखती है, तो मेरे भी उसके प्रति कुछ फ़र्ज बनते हैं। और जब वो मेरे परिवार के लिए खुद को, अपनी ज़रूरतों, आराम और तकलीफ़ को नज़रअंदाज करती है, तो उसका पति होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी है और जिम्मेदारी भी कि मैं उसका ख्याल रखूँ। इसलिए नानुकुर करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। दृशांत ने पहले नरमी से, फिर संजीदगी धारण की और अंत में सख्ती से हुक्म सुनाया। पल्लवी मन ही मन चिड़ उठी। ऐसे भी कोई बीवी को खाने के लिए बोलता है? ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब है? दृशांत की भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गई थीं और आंखें जरा छोटी और गहरी हो गई थीं। वो जैसे ही चुप हुआ, पल्लवी तुनकते हुए बोली, ऐसे जैसे आपने मुझे कहा, जरा भी प्यार और परवाह नहीं झलक रही आपके व्यवहार में। ऐसा लग रहा है शब्दों के पत्थर फेंक कर मार रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं मुझ पर। पल्लवी की बात सुनकर दृशांत पल भर आंखें छोटी छोटी किए उसे घूरता रहा, फिर तल्ख कठोर लहजे में बोला, चला रहा हूँ हुक्म, क्योंकि प्यार तुमसे हजम नहीं होता, इसलिए अपने इस मुंह का इस्तेमाल मुझसे बहस करने के बजाय खाना खाने के लिए करो। एक बार फिर दृशांत ने उसकी ओर निवाला बढ़ाया, पर पल्लवी मुंह खोलने के बजाय मुंह ऐंठते हुए उसे नाराजगी से घूरने लगी। दृशांत ने उसे आंखें दिखाई। अगले ही पल पल्लवी ने नाक से कोड़ते हुए मुंह खोल दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि ये झल्ली इतनी समझदार है। पल्लवी के उखड़े मूड को देखते हुए दृशांत ने बात शुरू की, पर असर उल्टा ही हुआ। गुस्से से भड़की पल्लवी ने खींचते हुए उसे घूरा। अच्छा, तो मतलब मैं आपको बेवकूफ लगती थी? दृशांत उसकी ये अदा देखकर मुस्कुराया, फिर एक और निवाला उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, नादान लगती थी, दुनियादारी से अनजान, अपनी धुन में मगन रहने वाली एक बेपरवासी, चंचल, शोक, छल्ली सी लड़की, जो हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी, जो दिल में आता बिना सोचे समझे झट से बोल जाती थी, उल्टी सीधी जगहों पर दिमाग दौड़ाते हुए रोज नई शरारतें करती थी। पर अब तुम्हें देखता हूँ तो लगता ही नहीं कि मेरे सामने वही नादान और झल्ली सी लड़की खड़ी है जिसने मेरे पूरे घर को संभाला हुआ है, जो मेरे परिवार की इज्जत के लिए हर जिम्मेदारी निभा रही है, सबकी बातें भी खामोशी से सुन रही है, बिना किसी शिकायत के हर काम कर है, मेरे घर वालों का इतना ख्याल रखती है कि उनके बीच खुद पर ध्यान देना ही भूल जाती है। दृशांत बेहद संजीदा लग रहा था। उसकी जज्बात छलकाती आंखों में झांकती पल्लवी का गुस्सा उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर कुछ कम हुआ। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी झल्ली बीवी अब समझदार हो गई है, घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगी है। पल्लवी की बात सुनकर दृशांत की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, खुश तो मैं हूँ, और तब भी था जब तुम इस घर में आकर माँ से रोज नई फरमाइशें करती थी, हक से अपना हुक्म चलाती थी, अंतरा के साथ मिलकर उल्टी सीधी हरकतें करके सबको तंग करती थी, जो दिल में होता था वो फौरन बेझिझक बोल दिया करती थी। तुम्हारी वही बेपरवाही, अल्हाड़पन पसंद था मुझे, उसी शरारती, झल्ली और बातूनी लड़की से मोहब्बत हुई थी मुझे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो नादान सी लड़की वक्त आने पर इतनी समझदार हो जाएगी और हर जिम्मेदारी को इतने अच्छे से निभाएगी, मेरे परिवार को इस तरह संभाल लेगी। पर अब जब तुम्हें सब करते देखता हूँ तो अपनी पसंद पर नाज होता है, जब तुम्हें सबकी इतनी परवाह करते और ख्याल रखते देखता हूँ तो गर्व होता है तुम पर, जब घर आए मेहमान तुम्हारी तारीफ करते हैं तो खुशी होती है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। दृशांत के शब्द उसके दिल को एक अजीब सी खुशी का एहसास करा रहे थे, पर उस खुशी को उसने अपने रुख पर नहीं आने दिया और मुंह बनाते हुए बोली, मस्का लगा रहे हैं मुझे? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें मस्का लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, जो दिल में था वही कहा है मैंने तो। दृशांत ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाया और एक और निवाला उसकी ओर बढ़ाया। ये देखकर पल्लवी ने मुंह ऐंठ लिया, सारा मुझे ही खिलाए जा रहे हैं, आप खुद भी तो खाइए। पहले तुम खाओ और कुछ देर आराम करो, मैं खा लूँगा। नहीं, साथ में खाइए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। पल्लवी ने जिद्दी बच्चे जैसे मुंह से कोड़ते हुए अपना हठ दिखाया और गालों के गुब्बारे जैसे फुलाए उसे घूरने लगी। उसे यूं खफा देखकर दृशांत ने उसके आगे घुटने टेक दिए। अच्छा चलो, ये वाला तो तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगा। पक्का? अगर चीटिंग की तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। पल्लवी की चेतावनी सुनकर दृशांत ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शुक्ला जी? दृशांत खाने की खाली ट्रे लेकर जाने लगा था जब पल्लवी के पुकारने पर ठहर गया। कुछ चाहिए तुम्हें? दृशांत ने उसकी ओर पलटते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर पल्लवी ने जुगनू सी चमकती आंखों से उसे देखा और तपाक से बोल पड़ी, हाँ, वो गिफ्ट जो आप मेरे लिए लाए थे। पल्लवी शातिर थी, मौका देखकर उसने चौका मार दिया। दृशांत के चेहरे के नर्म भाव तुरंत ही सख्त हुए थे। नहीं मिलेगा, परसों से पहले तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सख्ती से इनकार करते हुए दृशांत वहां से चला गया और पीछे पल्लवी गुस्से में नाक मुंह से कुड़ती रह गई।